एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जिसे सुनते ही दिमाग में बड़ी बड़ी चिंताएं घूमने लगती हैं।
बिल्कुल, जैसे जनसंख्या विस्फोट, भुखमरी, संसाधन खत्म हो रहे हैं।
हाँ, और इन सब डरावने ख्यालों के एक तरह से पोस्टर बॉय है थॉमस रॉबर्ट मैल्थस।
लेकिन आज हमारी कोशिश इस छवि के पीछे छिपे असली इंसान और उसके विचारों को समझने की है।
और इस सफर में हमारी गाइड है डोनाल्ड विंच की किताब माल्थस। ये किताब एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाती है
या?
कि क्या माल्थस सच में उतने ही निराशावादी थे जितना उन्हें समझा जाता है,
या फिर सदियों से हमने उनके विचारों को गलत समझा है।
बिल्कुल। माल्थूजियन शब्द आज भी ऐसा लगता है जैसे कयामत का दूसरा नाम हो, पर शायद असली कहानी कुछ और ही है।
तो आज का हमारा मिशन है माल्थस का एक बौद्धिक बचाव। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक गंभीर विचारक के जटिल विचारों को एक आसान से और अक्सर गलत लेबल में कैद कर दिया गया।
और इस बचाव अभियान को शुरू करने से पहले मुझे लगता है हमें इसके लेखक डोनाल्ड विंच को समझना होगा।
हाँ, वो कोई आम जीवनीकार तो नहीं थे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। विंच ब्रिटेन के एक बहुत ही सम्मानित बौद्धिक इतिहासकार थे और उनकी खासियत थी विचारों को उनके सही समय और संदर्भ में रखकर देखना।
मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि किसी ने क्या कहा, बल्कि ये भी कि क्यों और किन हालात में कहा।
हाँ, वो उस दौर की नब्ज पकड़ना जानते थे।
जैसे 18वीं सदी के आखिर में यूरोप में क्या चल रहा था, फ्रांसीसी क्रांति का असर,
और उस समय के जो बड़े बड़े आदर्शवादी विचारक थे वो किस तरह के सपने देख रहे थे। विंच की यही खासियत हमें माल्थस को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है।
वो माल्थस को किसी अलग थलग भविष्यवक्ता की तरह नहीं देखते।
नहीं, बल्कि अपने समय की सबसे बड़ी बहसों के बीच खड़े एक विचारक के रूप में देखते हैं, और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है।
तो फिर ये किताब असल में करना क्या चाहती है?
जैसा कि आपने कहा, ये एक बौद्धिक बचाव अभियान है। विंच का मकसद है माल्थस को कयामत के पैगंबर वाली छवि से निकालकर एक गंभीर और नैतिक विचारक के तौर पर दोबारा पेश करना।
और किताब का सबसे बड़ा तर्क यह है कि माल्थस के विचार हवा में पैदा नहीं हुए थे?
नहीं, वो किसी चीज की प्रतिक्रिया थे।
अच्छा, किसकी प्रतिक्रिया?
उस दौर के जो यूटोपियन मतलब आदर्शवादी विचारक थे उनकी, जैसे विलियम गॉडविन।
हाँ, उनका मानना था कि इंसान अपनी तर्क शक्ति से एक परफेक्ट दुनिया बना सकता है।
बिल्कुल, जहां कोई गरीबी नहीं, कोई दुख नहीं। और माल्थस ने इसी सपने पर एक बहुत बड़ा और बहुत कठोर सवालिया निशान लगाया था।
और किताब ये भी दिखाती है कि माल्थस के विचार कोई पत्थर की लकीर नहीं थे, वो समय के साथ बदले, विकसित हुए।
हाँ, उनका पहला निबंध जो 1798 में आया वो तो एक तरह का हमला था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने विचारों को काफी सुधारा।
और इसी सुधार में से एक ऐसा विचार निकला जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं,
नैतिक संयम यानी मॉरल रिस्ट्रेंट। ये एक उम्मीद से भरा विचार था जो माल्थस की पूरी छवि को ही बदल देता है।
तो उस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले उस माहौल को समझते हैं जहां से यह सब शुरू हुआ।
ठीक है, तो चलिए उस दौर में चलते हैं।
फ्रांसीसी क्रांति अभी अभी हुई है और पूरे यूरोप में एक नई उम्मीद की लहर है।
लोगों को लग रहा है कि अब इंसान अपनी पुरानी बेड़ियों को तोड़कर तर्क के सहारे एक बेहतर दुनिया बना सकता है।
और इस उम्मीद को हवा दे रहे थे विलियम गॉडविन जैसे विचारक।
हाँ, उनका कहना था कि समाज की सारी समस्याएं, गरीबी, अपराध, युद्ध, ये सब हमारी बनाई गलत संस्थाओं की वजह से हैं।
जैसे सरकार या शादी।
हाँ, और अगर हम इन्हें बदल दे तो इंसान का स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा।
जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि ये बहस तो माल्थस के अपने घर में ही चल रही थी।
सही में? हाँ,
उनके अपने पिता डैनियल माल्थस गॉडविन के इन विचारों का बहुत बड़ा प्रशंसक थे।
मतलब बाप बेटे में ही इस पे बहस होती थी।
बिल्कुल, माल्थस का जो पहला और सबसे मशहूर निबंध है वो असल में अपने पिता के साथ हुई एक लंबी बहस का ही नतीजा है।
वाओ, मतलब एक पारिवारिक बहस ने दुनिया की सबसे बड़ी बहसों में से एक को जन्म दे दिया।
तो इस पहले निबंध का तर्क क्या था? माल्थस ने ऐसा क्या कह दिया कि इतनी हलचल मच गई?
उन्होंने दो बहुत ही सीधी साधी बातें कही। पहली, जीने के लिए खाना जरूरी है।
ठीक है।
दूसरी, स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण एक प्राकृतिक सच है। इन दो आधारों पर उन्होंने एक गणित पेश किया
जो सुनने में बड़ा सरल पर नतीजों में बहुत भयानक था।
हाँ, कौन सा गणित था वो?
उन्होंने कहा जनसंख्या रॉकेट की तरह बढ़ती है ज्यामितीय गति से, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16।
और खाना?
वो बैलगाड़ी की रफ्तार से बढ़ता है, अंक गणितीय गति से, मतलब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5।
अरे, इसका मतलब तो ये हुआ कि एक पॉइंट पर जाकर जनसंख्या हमेशा खाने से ज्यादा हो जाएगी।
बस यही माल्थस का मुख्य बिंदु था।
तो फिर क्या होगा?
उन्होंने कहा कि इस वजह से प्रकृति जनसंख्या पर हमेशा कोई ना कोई रोक, मतलब चेक लगा कर रखती है।
और अपने पहले निबंध में उन्होंने सिर्फ 2 तरह की रोग बताई।
कौन सी?
दुख यानी मिजरी, जिसमें अकाल, बीमारी, युद्ध जैसी चीजें आते हैं, और अवगुण यानी वाइस, मतलब अनैतिक व्यवहार।
ये तो बहुत ही कठोर और निराशावादी नजरिया है। मतलब इंसान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं,
या तो प्रकृति उसे मारेगी या वो खुद को नैतिक रूप से गिरा लेगा।
कोई हैरानी नहीं कि लोगों ने इसकी इतनी आलोचना की।
हाँ, पर क्या माल्थस पर इसका कोई असर हुआ?
बिल्कुल हुआ, और यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है।
अच्छा?
माल्थस ने आलोचना को दिल पर नहीं लिया, बल्कि उससे सीखा। उन्होंने अगले 5 साल यूरोप में घूम घूम कर डेटा इकट्ठा किया,
और 1803 में अपने निबंध का दूसरा बहुत बड़ा और सुधरावा संस्करण निकाला।
और उसमें नया क्या था?
उसमें एक तीसरा रास्ता था, एक क्रांतिकारी विचार।
वो क्या था?
नैतिक संयम यानी मॉरल रिस्ट्रेंट। यह एक निवारक रोग थी। इसका मतलब था कि इंसान अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके एक बेहतर चुनाव कर सकता है,
उसे दुख और अवगुण के बीच फंसने की जरूरत नहीं।
एक मिनट, नैतिक संयम का मतलब ठीक ठीक क्या है?
इसका मतलब था जिम्मेदारी से सोचना, शादी तब तक टाल देना जब तक आप एक परिवार का पालन पोषण करने में आर्थिक रूप से सक्षम ना हो,
और इस इंतजार के दौरान
पूरी तरह से नैतिक आचरण करना यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना।
वाह, इस एक विचार ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी है ना।
बिल्कुल, ये माल्थस को एक नियतिवादी, जो कहता है कि सब कुछ पहले से तय है, से एक नैतिक दार्शनिक बना देता है,
जो इंसान की इन इच्छा शक्ति और विवेक में यकीन करता है। अब गेंद इंसान के पाले में थी।
बिल्कुल, और माल्थस सिर्फ जनसंख्या पर ही नहीं लिख रहे थे, वे अपने दौर के एक अहम अर्थशास्त्री भी थे।
हाँ, उन्होंने उस समय के गरीबी कानूनों, मतलब पुअर लॉज, का जोरदार विरोध किया था।
लेकिन गरीबों की मदद करने में क्या बुराई है? ये तो सुनने में बहुत कठोर लगता है।
हाँ, और इसी वजह से उनकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन उनका तर्क समझना जरूरी है।
क्या तर्क था उनका?
माल्थस का मानना था कि ये कानून मदद करने के बजाय गरीबों को और गरीब बना रहे हैं।
वो कैसे?
उनके मुताबिक बिना शर्त मदद लोगों को गैर जिम्मेदार बनाती है, उन्हें जल्दी शादी करके ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उकसाती है,
जिससे श्रम बाजार में मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है और सबकी मजदूरी गिर जाती है।
हाँ, वो कह रही थी कि ये एक शॉर्ट टर्म समाधान है जो लॉन्ग टर्म में समस्या को और बढ़ाता है।
ये तो वही बहस है जो आज भी चलती है कि कल्याणकारी योजनाएं लोगों को आत्मनिर्भर बनाती हैं या आश्रित।
बिल्कुल, और इनकी अर्थशास्त्र की दुनिया में और क्या देन थी? मैंने उनके और डेविड रिकार्डो के बारे में सुना है।
हाँ, रिकार्डो उनके सबसे अच्छे दोस्त भी थे और सबसे बड़े बौद्धिक दुश्मन भी।
दोनों में जमीन आसमान का फर्क था।
एक तरफ रिकार्डो थे जो कागज पर एकदम परफेक्ट सिद्धांतिक आर्थिक मॉडल बनाते थे,
और दूसरी तरफ माल्थस थे जो हमेशा कहते थे, एक मिनट रुको, जरा खिड़की से बाहर देखो, असल दुनिया ऐसे काम नहीं करती।
तो क्या कोई खास मुद्दा था जिस पर वे सहमत नहीं थे?
सबसे बड़ा मुद्दा था जनरल ग्लट का,
मतलब व्यापक आर्थिक मंदी।
हाँ, रिकार्डो और उस समय के बाकी सभी अर्थशास्त्री मानते थे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता
कि बाजार में जरूरत से ज्यादा सामान बन जाए।
हाँ, उनका मानना था कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद बना लेती है।
लेकिन माल्थस ने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है।
हो सकता है कि अमीर लोग पर्याप्त खर्च ना करें और मजदूरों के पास खरीदने के लिए पैसे ना हो और पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाए।
उस समय सबने उनका मजाक उड़ाया होगा, और उड़ाया। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा अहम मोमेंट।
क्या?
लगभग 100 साल बाद 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि माल्थस सही थे।
ये तो बहुत बड़ी बात है।
कीन्स ने माना कि उनकी अपनी जो आर्थिक मंदी की थ्योरी है, उसकी जड़ें माल्थस के काम में है।
मतलब जिस आदमी को सबने खारिज कर दिया था, उसे 100 साल बाद इतिहास का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री सही ठहरा रहा है।
यही तो विंच की किताब दिखाती है। लेकिन माल्थस की विरासत में एक और बड़ा पेज है।
वो क्या है?
चार्ल्स डार्विन ने खुद माना कि उन्हें प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का विचार माल्थस के अस्तित्व के लिए संघर्ष के बारे में पढ़कर ही आया था।
वाह, मतलब डार्विन के क्रांतिकारी विचार की प्रेरणा माल्थस थे।
लेकिन फिर गलतीफहमी कहां से पैदा हुई? गलतीफहमी पैदा हुई नव माल्थसियन लोगों से।
अच्छा, ये कौन थे?
ये वो लोग थे जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भ निरोधक जैसे कृत्रिम तरीकों का समर्थन करते थे। उन्होंने माल्थस का नाम इस्तेमाल किया।
हाँ, लेकिन माल्थस खुद एक पादरी थे, उनके लिए गर्भनिरोधक अवगुण था, नैतिक रूप से गलत।
उनका समाधान बाहरी तकनीक नहीं बल्कि अंदरूनी नैतिक आत्मनियंत्रण था।
ये उनके नाम के साथ जुड़ी सबसे बड़ी विडंबना है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं? मेरे लिए पहला तो यही है कि किसी भी विचारक को समझने के लिए उसका संदर्भ समझना सबसे जरूरी है।
बिल्कुल। और दूसरा ये कि विचार विकसित होते हैं। माल्थस कोई रोबोट नहीं थे जो एक ही प्रोग्राम पर चलते रहे।
उन्होंने आलोचना सुनी, सीखा और अपने विचारों को बदला।
नैतिक संयम का विचार इसका सबसे बड़ा सबूत है।
तीसरा संदेश उनके नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जुड़ा है। उनके लिए जनसंख्या का दबाव कोई गलती नहीं थी बल्कि ईश्वर की एक योजना थी।
एक चुनौती जो इंसान को आलस छोड़कर मेहनत करने और नैतिक रूप से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है।
चौथा, जो मुझे आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत प्रासंगिक लगता है, वो है विचारों का अपहरण।
कैसे माल्थूजियन शब्द का मतलब उसके असली विचारक के इरादों से बिल्कुल उलट हो गया।
ये आज भी होता है जब हम किसी जटिल विचार को एक हैशटैग में कैद कर देते हैं और उसकी सारी गहराई खो जाती है।
उनके तर्कों को और अच्छे से समझने के लिए मुझे लगता है हमें उनके कुछ सबसे ताकतवर वाक्यों को देखना होगा, है ना?
बिल्कुल, खासकर वो वाला जिसने पूरी बहस शुरू कर दी थी। जनसंख्या की शक्ति धरती की भोजन पैदा करने की शक्ति से कहीं ज्यादा है।
ये वाक्य उनके शुरुआती काम का सार है, सीधा, सरल और डरावना।
लेकिन फिर एक दूसरा विचार है जो उनके विकसित रूप को दिखाता है।
कौन सा?
नैतिक संयम। विवेकपूर्ण सोच के आधार पर शादी से परहेज है, जब तक कि आप एक परिवार का समर्थन करने में सक्षम ना हो।
ये उनके आशावादी पक्ष को दिखाता है। ये बताता है कि वे इंसान को एक असहाय प्राणी नहीं बल्कि एक विवेकशील प्राणी मानती थीं।
और अब वो विवादास्पद विचार जिसे अक्सर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, सुनने में यह बहुत क्रूर लगता है।
कौन सा?
उन्होंने लिखा, जो व्यक्ति पहले से बसी हुई दुनिया में पैदा हुआ है उसे भोजन के सबसे छोटे हिस्से पर भी कोई अधिकार नहीं है।
सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो सच में ये मानती थी कि गरीबों को भूखा मर जाना चाहिए?
नहीं, और विंच यहीं पर संदर्भ समझाते हैं। ये बयान गरीबों के प्रति नफरत नहीं बल्कि गरीबी कानूनों की एक खास आलोचना थी।
अच्छा, तो उनका तर्क क्या था?
उनका तर्क था कि अगर समाज किसी को काम नहीं दे सकता तो उसे यह झूठा दावा करने का अधिकार नहीं है कि उसे समाज से मदद पाने का हक है। उनका मानना था कि ऐसा हक देने से पूरी व्यवस्था ही ढह जाएगी।
तो ये एक आर्थिक तर्क था, न कि नैतिक फैसला।
बिल्कुल। तो इन सब बातों का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम इसे अपने जीवन में कैसे देख सकते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली और सीधी सीख तो यही है कि हमें लेबलों से परे देखना चाहिए।
अगली बार जब कोई माल्थूजियन कहे तो डरने के बजाय ये पूछना चाहिए कि आप असली माल्थस की बात कर रहे हैं या उस कार्टून की जो बना दिया गया है।
सही बात है। और दूसरा, माल्थस को हम विकास की सीमाओं मतलब लिमिट्स टू ग्रोथ पर बहस शुरू करने वाले पहले विचारकों में से एक मान सकते हैं।
ये सवाल कि एक सीमित ग्रह पर असीमित विकास कैसे हो सकता है?
ये आज पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की बहसों के केंद्र में है। ये मूल रूप से माल्थस का ही सवाल है।
तीसरा, जैसा हमने पहले भी कहा, समाज कल्याण योजनाओं पर बहस।
भारत में सब्सिडी, मनरेगा या दूसरी योजनाओं को लेकर आज भी वही सवाल उठाए जाते हैं जो माल्थस ने उठाए थे,
कि हम मदद और निर्भरता के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं?
क्या ये योजनाएं लोगों को सशक्त कर रही हैं या उन्हें हमेशा के लिए सरकार पर आश्रित बना रही हैं?
और अगर हम इसे व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो माल्थस की नैतिक संयम की सलाह आज भी बहुत काम की है।
उसे सिर्फ शादी तक सीमित क्यों रखें?
सही बात है, इसका बड़ा मतलब है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले,
चाहे वो करियर हो, लोन लेना हो या परिवार शुरू करना हो,
दूरदर्शिता के साथ फैसले लेना।
तो इस चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि थॉमस माल्थस अपनी बदनाम छवि से कहीं ज्यादा जटिल और मानवीय विचारक थे।
विंच की किताब यह साबित करती है कि माल्थस का समाधान अकाल या युद्ध नहीं था,
बल्कि शिक्षा, दूरदर्शिता और व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी थी।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि जिसे हमेशा निराशावाद का प्रतीक माना गया, उसने असल में मानवीय इच्छा शक्ति और सुधार की उम्मीद का एक रास्ता दिखाया था।
उनका संदेश किस्मत का नहीं बल्कि चुनाव का था।
वे कह रहे थे कि हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है अगर हम जिम्मेदारी से काम लें।
और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी।
आज हम तकनीकी आशावाद की युग में जी रहे हैं। हमें लगता है कि जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी तक हर समस्या का समाधान एक नई तकनीक या एक नया ऐप है।
ऐसे में क्या माल्थस की ये चेतावनी कि कुछ समस्याएं मानव स्वभाव और प्राकृतिक सीमाओं से जुड़ी हैं?
और उनका समाधान सिर्फ तकनीक में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार और हमारी नैतिकता में खोजना होगा। पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो गई है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।